हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 3। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। यं प्रव्रजन्तमनुपीतमपीतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिति दीक्षतां तमोन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपया गुरुं मुनीना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं केशं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यनन्दा श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदिगारभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 13। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम्। अतः पुंभिर् द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम्। अतः पुंभिर् द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम्। अतः पुंभिर् द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अतः पुंभिर् द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अतः पुंभिर् द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम्। अतः पुंभिर् द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अतः पुंभिर् द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर् हरितोषणम्। शब्दों का अर्थ देखिए। अतः, अतः का मतलब होता है अतएव, यानी इसलिए। इसलिए तो किस लिए? क्योंकि पहले वाले श्लोक में हमने क्या पढ़ा, जब श्लोक नंबर 12 में, तश्रद्धधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अर्थात जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, और ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा उस परम सत्य को अनुभूत करता है। अर्थात इस मनुष्य जीवन का एक ही लाभ है, भगवान का दर्शन, भगवत प्राप्ति, एकमात्र एक ही लाभ है, और यही इस जीवन का सार है। क्योंकि यदि इस मनुष्य जीवन में हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई, यदि भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो जो कुछ भी हमें इस संसार में प्राप्त हुआ है वो सब व्यर्थ है। जैसे हमने पहले पढ़ा श्लोक नंबर 8 में, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेत् यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। यदि अपने धर्म का स्वनिष्ठित तरीके से हम पालन भी करते हैं, परंतु यदि भगवान की कथा के प्रति हमारी रति नहीं होती है, तो वो सारा का सारा श्रम है, सारा का सारा व्यर्थ है, केवल लेबर मात्र है, कोई फायदा नहीं उसका। तो इसी यहाँ पर क्या बताया था, नोत्पादयेत् यदि रतिम्, यानी ये नेगेटिव में बताया था, और आज के श्लोक में हमें बता रहे हैं अब, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण प्राप्ति है, कृष्ण की कथा में रति जागृत हो जाना, अर्थात कृष्ण से प्रेम हो जाना, और यही जीवन का लक्ष्य है। उसने बोला था कि यदि नहीं होता है तो श्रम है, और अगर हो जाता है तो क्या है, वो आज बता रहे। अतः मना इसलिए, और आगे पुंबिर द्विज, कुंभ कहते हैं मनुष्य द्वारा और द्विज द्विज कहते हैं, ज का मतलब होता है जन और द्वि का मतलब होता है दो, यानी दो बारा जिसका जन्म हुआ हो, है मतलब कि देखो मनुष्य का एक बार जन्म होता है उसके माँ के गर्भ से, और दोबारा जब गुरु महाराज उसे ब्राह्मण दीक्षा देते, जब जनेऊ पहनाते ना, तो उसको जिसको ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है उसको द्विज कहा जाता है। वैसे कहा जाता है, शास्त्र कहता है जन्मना शुद्र जायते, जितने भी प्राणी हैं जन्म जब लेते हैं तो वो शुद्र होते हैं, और संस्कारात द्विज उच्यते, जब संस्कार होता है यानी कि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है जिसमें यज्ञ में ब्राह्मण उसको ब्राह्मण दीक्षा देते हैं उस टाइम पर वो द्विज बनता है, परंतु उसे अभी तक सारा का सारा वेद का ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, वेद पाठा दवे विप्र, जो जब वो वेद पढ़ता है अभी तक पढ़ रहा होता है तो उसको विप्र कहा जाता है, और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जब वो ब्रह्म को जान लेता है, जब उसकी ब्रह्म जिज्ञासा कंप्लीट हो जाती है तब उसको ब्राह्मण कहते हैं। और अतः पुंबे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश, वर्णाश्रम का मतलब होता है चार वर्ण तथा जीवन के चार आश्रम, याद तक जानते हो कौन कौन से वर्ण हैं और कौन कौन से आश्रम होते हैं। पहला सबसे उच्च वर्ण है ब्राह्मण, और ब्राह्मण का कार्य क्या है, वेद पढ़ना, और अन्य तीन जो दूसरे तीन वर्ण रहते हैं कौन से, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उनको शिक्षा देना। ब्राह्मण का केवल एक ही कार्य है कि वो खुद भी अध्ययन करे और दूसरों को शिक्षा दे, और उसके अतिरिक्त उसका कोई कार्य नहीं। धन कमाना ब्राह्मण का कार्य नहीं है, ब्राह्मण का कार्य ये है कि वो शास्त्र अध्ययन करेगा और शिक्षा देगा। उसके बाद है क्षत्रिय, क्षत्रिय जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है, और उसका कार्य है शासन करना, मतलब राज्य कारोबार को संभालना, धर्म की रक्षा करना, और जो दो बाकी के तीन वर्ण हैं उनकी रक्षा के लिए युद्ध करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। अब वो जब ये कार्य करता है, अपना धर्म निभाता है वर्ण के हिसाब से, तो धन उसको स्वयं मिलता है। इस धन कमाने के लिए उसको इसके अतिरिक्त और कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है वैश्य, वैश्य का कार्य क्या है, व्यापार करना, और व्यापार करके धन अर्जित करना। ये धन अर्जित करना वैश्य का काम है, परंतु किस लिए, ताकि वो अन्य जैसे ब्राह्मण को धन दे सके, और वैश्य ये क्षत्रिय जो कार्य मतलब इन सब जो वैश्य होता है वो टैक्स भी देते हैं, और वो उसके वैश्य के धन से बाकी तीन वर्णों का पालन होता है, और जो शूद्र होता है उसका कार्य क्या होता है, दूसरों की सेवा करना। परंतु ये बात याद रखने की है कि ये सारे वर्ण हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने ये सारे वर्ण बनाए हैं किसलिए, भगवान स्वयं बताते हैं 4.34 में, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट्या गुण कर्म विभागश। अब वो मैंने ही बनाए हैं, लेकिन इसलिए बनाए हैं कि वो भक्ति करें, वो मेरी भक्ति करके इन चार वर्ण और आश्रम की व्यवस्था भगवान ने इसने किस तरह बनाई। अब ये सब गुण और कर्म के अनुसार बनाया भगवान ने, लेकिन इसमें हर एक वर्ण को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक आश्रम में रहना पड़ता है। आश्रम का क्या मतलब होता है, जिसमें कंटिन्यूअस श्रम हो, आ मतलब कंटिन्यूअस सतत, और श्रम का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तो पहला आश्रम ये चारों वर्णों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैश्य होंगे या शूद्र होंगे, या चारों वर्णों के शुरू में एक मतलब शुरू से लेकर 25 साल तक उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना पड़ता है। आश्रम में ब्रह्मचर्य मतलब उसमें कंटिन्यूस उसको वेद अध्ययन करना पड़ता है, शास्त्र पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पर ये समझ में आता ना कि वेद अध्ययन करना खाली ब्राह्मण का कार्य नहीं है, ब्राह्मण का कार्य बाद में शुरू होता है जब वो सिखाता है और ज्यादा उसके बारे में सोचता है, लेकिन हर वर्ण का शुरू से 1 से लेकर 25 साल तक जो है, जैसे मतलब उसको शिक्षा देने का टाइम होता है, वहां से लेकर 25 साल तक उसको सिर्फ और सिर्फ शास्त्र अध्ययन करना, बेस इतना परफेक्ट हो कि आगे वो खुद ब खुद, फिर तो भक्ति खुद ही हो जाएगी। अब देखो शास्त्र हम जब थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में कैसे आता है कि नहीं हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान का हमारा जीवन केवल ये आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए नहीं बना। तो शुरू से जिसको ये शिक्षा दी जाएगी 25 साल तक, जिसके अंदर ये भर दिया जाएगा कि आपका ये जीवन केवल और केवल आपके जीवन की सक्सेस क्या है कि आप भगवान को प्राप्त करो, तो वो जाहिर सी बात है वो करेगा वो ही काम। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ भौतिक एजुकेशन दी जाती है, एजुकेशन ही दी जाती है शुरू के दिनों में, लेकिन कोई आध्यात्मिक एजुकेशन नहीं दी जाती। मतलब जो ब्रह्मचर्य है उसकी, उसका आश्रम है ना, वो पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब जो मैं भौतिक एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ उसका कारण क्या। वो सिर्फ ये समझता है, बच्चा जब 25 साल तक पहुंचता है तो उसको इतनी भौतिक एजुकेशन दिमाग के अंदर घुसा दी जाती है कि उसको लगता है जीवन का मकसद केवल और केवल धन अर्जित करना है। इसमें इतना पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में ये नौकरी करूंगा, उसके बाद में धन अर्जित करूंगा, बस यहाँ से ही पूरा सत्यानाश हो जाता है जब वो ब्रह्मचर्य की दहलीज को पार करता है। पहला ही आश्रम सत्यानाश, उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है कि आप, क्योंकि उसने सब कुछ सीख लिया, उसके बाद उसको सहयोग से, उसको अब लाइफ पार्टनर भी मिल गया, उनके सहयोग से मिलकर वो धर्म के कार्य करने होते हैं, भक्ति करनी होती है, ब्राह्मणों को दान देना होता है। गृहस्थ के बहुत बहुत आश्रम है ये, गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ कोई है ना अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भगवान ने नहीं बनाया कि बस हाँ तुमको लाइसेंस मिल गया, अब जाओ अपनी इंद्रिय तृप्ति करो, बच्चे पैदा करो और बच्चों को भी यही सिखाओ और लानत भरा जीवन गुजारो, खुद भी और अपने बच्चों को भी यही सिखाओ, इसलिए नहीं है। गृहस्थ एक आश्रम है और भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं कहते हैं कि वह काम जो धर्म के विरुद्ध ना हो वो स्वयं मैं हूँ। लेकिन यहाँ पर किसी को पता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य में सही शिक्षा नहीं हुई, तो गृहस्थ आश्रम पूरा बिगड़ जाता है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का तो किसी को खबर ही नहीं है कि वानप्रस्थ में घरना क्या है हमको। और जैसे 25 से लेकर 50 साल तक गृहस्थ आश्रम को फॉलो करना पड़ता है, गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति करनी होती है, और 50 साल के बाद 75 साल तक, 50 से लेकर 75 यानी 50 से लेकर 75 तक हमें वानप्रस्थ आश्रम में रहना होता है। ये एक बहुत ही कठिन आश्रम होता है, यानी कि घर वालों के साथ रहकर भी हमें विरक्त जैसा जीवन गुजारना पड़ता है किसी चीज में आसक्ति। और उसके बाद संन्यास जब 75 में आ जाता है तो संन्यास आश्रम होता है 75 से 100 तक। लेकिन ये तो तब का था जब मनुष्य की उम्र 100 साल थी, आज तो हमें और भी कम कम करके गृहस्थ आश्रम को भी कम करना चाहिए और जल्दी से संन्यास, लेकिन है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है कोई सारा का सारा। और किसी को खबर भी नहीं है, किसी का अगर गुण भी होगा ना ब्राह्मण का, वेद पढ़ना जैसे गुण कर्म विभाग है ना, लेकिन वो हर कोई वैश्य को भी, मतलब जैसा वैश्य का है ना कि मुझे बिजनेस करना है कमाना, ब्राह्मण को भी पता है मुझे बिजनेस करना है कमाना, क्षत्रिय को भी पता है मुझे ये करना है कमाना, और शूद्र को भी पता है कमाना, बस जीवन का लक्ष्य बनाकर रख दिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ धन अर्जित करना है और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना है। इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त कोई और गोल ऑफ लाइफ दिखता नहीं है मनुष्य को, क्योंकि शास्त्र अध्ययन नहीं किया। सबसे बड़ा हमारा दुख है, सबसे बड़ी हमारी विडंबना है, सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने शास्त्र को खोल कर नहीं देखते कि हमको मिला क्यों है ये जीवन, हम ये वर्ण और आश्रम क्या है। पहले हमने पढ़ा आपके मनुष्य जन्म के 4 पुरुषार्थ केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए, वर्ण केवल भगवत प्राप्ति के लिए, ये आश्रम केवल भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन इस संसार में सब कुछ है, हर एक के जो भी है ना अपना अपना कार्य कर रहा है, सिर्फ उसमें से भगवत प्राप्ति निकाल दिया बस, बाकी सब कुछ करने का। लेकिन अब यहाँ पर ये पता चलता है कि कोई भी अपने वर्ण आश्रम का पालन नहीं कर रहा है। अभी ब्राह्मण है वो भी है ना, वेद सही नहीं पढ़ते हैं, मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं, और क्षत्रिय है वो रक्षा चला रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है किसी को कि क्या करना है मुझे। लेकिन यदि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर वर्णाश्रम विभाग कि अगर कोई बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने वर्ण आश्रम, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ना खराब ही होंगे अपने वर्ण आश्रम का धर्म का पालन नहीं करते, लेकिन यहाँ पर एक लिखा हुआ है अतः कुंभे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सुनिश्चित धर्म से। अगर बहुत 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 अच्छे तरीके से, सुनिश्चितता का मतलब है बहुत ही अच्छे तरीके से हर वर्ण और आश्रम का व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसका मीटर क्या है, उसको उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, तो आगे बताते हैं। संसिद्धिम हरितोषणा, संसिद्धिम का मतलब होता है सर्वोच्च सिद्धि, हरि का मतलब है वह भगवान जो आपके समस्त कष्टों को हर लेता है। हरि का भगवान वो हरि का मतलब है वो भगवान जो आपके समस्त अपराधों को हर लेता है। अगर वह संसिद्धिम हरि तोषणम, तोषणम का मतलब होता है यदि वह प्रसन्न हो जाए, तुष्ट एकदम संतुष्ट हो जाए, मतलब आप अपने धर्म का वर्ण और आश्रम का अगर सही सही बिल्कुल परफेक्टली उसको सही से कर रहे हो, लेकिन अगर उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं तो व्यर्थ है। जैसे हमने पढ़ा था श्रम एवहि केवलम, इसको पॉजिटिव वे में अभी क्या बता रहे हैं कि अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो आप समझो सही है, वरना अगर आपने अपना धर्म बहुत ही अच्छे तरीके से निभा लिया लेकिन फिर भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सके, कोई ऐसे कह सकता है ना कि भाई हम अपने वर्ण और आश्रम का सही सही पालन करते हैं, हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी होकर बोले कि मैं खाली शास्त्र अध्ययन कर रहा हूँ, गृहस्थ होकर बोले कि मैं दान दे रहा हूँ ब्राह्मणों को, मैं अपने कर्तव्य पूरे कर रहा हूँ, और क्षत्रिय बोले मैं अपने कर्तव्य पूरे कर रहा हूँ, तो फिर भगवान की भक्ति करना जरूरी है क्या? भगवान की भक्ति क्यों करूं जब मैं अपने कर्तव्यों को बिल्कुल अच्छे सुनिश्चित धर्म से, तो मैं ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा हूँ, तो फिर भगवान की भक्ति क्यों, क्यों मुझे भगवान की भक्ति करने के लिए बाध्य किया जाता है? तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं सुत गोस्वामी कि इस संसार में सब कुछ कृष्ण का है, हम जो कुछ भी ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, संसार से हमें बहुत कुछ मिल रहा है, सांस लेने के लिए वायु, कार्य करने के लिए सूर्य प्रकाश, हर चीज हम कृष्ण से ले रहे हैं, इवन बाकी सब चीजें छोड़ो, हमारे शरीर कृष्ण का दिया हुआ है, या आत्मा भगवान से कृष्ण का अंश है, बुद्धि कृष्ण की दी हुई है, सब कुछ कृष्ण का भोग रहे हैं, और कह रहे हैं ईमानदार हैं कि कृष्ण का उठा रहे हैं सब कुछ, और ईमानदार है हो कैसे सकते हैं जब हम कृष्ण की सेवा नहीं करते? तो इसका मतलब होता है वो जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो ईमानदार हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए यदि आप अपने वर्ण आश्रम को बिल्कुल सही तरह से निभा रहे हो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो तो फिर भगवान आपसे संतुष्ट नहीं होगी। और भक्ति क्या है ये पहले ही हमें समझ लेना चाहिए, श्रवण और कीर्तन, यानी कि भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, श्रवण नहीं करते, तो समझो आप ईमानदार हो ही नहीं। और चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ तक कह दिया, चारे वर्णाश्रम यदि कृष्ण नाही बजे, स्वकर्म करिते से रव रवि परे मजे। चारे वर्ण आश्रम वाले एकदम अच्छे तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन यदि वो कृष्ण का भजन नहीं करते तो स्वकर्म करिते, अच्छा से अच्छे तरीके से आप अपना कार्य करो लेकिन किधर जाओगे, रव रवि परे मजे, घोर नरक में, ऐसा नरक जहाँ पर रव रव नाम के बहुत बड़े पक्षी होते हैं जिनके बहुत बड़े पंजे होते हैं और बहुत बड़ा मुंह का नोक कैसी नोकीली होती है, और वो आप जो वहां पर जाता है उसके गोश्त को खाते हैं, पंजों से नोचते हैं, इतना भयानक नरक में जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो मतलब चारों वर्ण आश्रम यदि अपनी योग्यता के बिल्कुल ठीक से अपना धर्म का पालन करते हैं लेकिन उससे भगवान को संतुष्ट नहीं करते, संसिद्धिम हरितोषण, तो उसका कर्तव्य पालन एकदम बेकार है, बिल्कुल व्यर्थ है, किसी कार्य का नहीं। और अगर करते हैं अपने धर्म का पालन, अगर सही तरह से नहीं भी कर रहे हैं लेकिन यदि भगवान को प्रसन्न कर लिया है तो समझो उनका जीवन परफेक्ट है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ही थी समझाएंगे तात्पर्य। अच्छा पहले अनुवाद देखिए, अतः ही द्विज श्रेष्ठ, यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सारे विश्व भर में, श्रील प्रभुपाद ने कहा सारे विश्व भर में मानव समाज चार वर्णों तथा चार आश्रमों में विभक्त है। चार वर्ण हैं बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। बुद्धिमान वर्ग का मतलब होता है ब्राह्मण, योद्धा वर्ग का मतलब होता है क्षत्रिय, उत्पादक वर्ग का मतलब होता है वैश्य और तथा श्रमिक वर्ग का मतलब होता है शूद्र। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित है, जन्म के अनुसार नहीं। प्रभुपाद ने देखो साफ साफ बताया, जैसे भगवान ने कहा था ना 4.34 में गुण कर्म विभाग। अक्सर ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं कि हम ही ब्राह्मण है, बस ब्राह्मण हम लोग क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया इसलिए ब्राह्मण। लेकिन ये यहाँ पर भगवान नहीं बोलते कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया इसलिए ब्राह्मण। ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, कर्म होने चाहिए, तभी आप ब्राह्मण। यदि ब्राह्मण कोई ब्राह्मण जैसे गुण नहीं रखता है तो उसको ब्राह्मण कहलाने के लिए योग्य थोड़े है वो। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने साफ साफ बताया कि जन्म के अनुसार नहीं है। जीवन के भी चार आश्रम है, इनके नाम ये है विद्यार्थी जीवन, ग्रस्त जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। विद्यार्थी जीवन मतलब ब्रह्मचर्य, ग्रस्त जीवन वानप्रस्थ और भक्त जीवन मतलब सन्यासी। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह से विभाजित हो, अन्यथा कोई भी संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। अगर हम इस वर्ण और आश्रम को सही तरह से फॉलो करेंगे तो एकदम परफेक्टली सबका जीवन चलेगा। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती, मतलब कोई परफेक्शन नहीं मिलेगी आपको संसार में। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना पक्का ही नहीं है ना। जो भी जिस वर्ण में है, जो आश्रम में, उसको पता है बस मेरे जीवन का लक्ष्य इंद्र तृप्ति है। लेकिन शास्त्र साफ साफ बताता है कि जीवन का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना। आप अपने गुणों और कर्मों के अनुसार आप एक आश्रम और वर्ण को स्वीकार कर रहे हो और उसके बाद आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हो, क्योंकि भगवान ने जीवन दिया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप इस जीवन के जन्म मरण के भौतिक क्लेशों से छूट कर मेरे पास आकर संतुष्टि प्राप्त करो। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है भगवान के पास संतुष्टि जाके प्राप्त नहीं करनी, मेरे को यहाँ पर करनी है। तो ये क्योंकि शिक्षा सही नहीं दी गई और इसीलिए बिगड़ गया पूरा संसार का माहौल। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्ण आश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो संस्कृत जीवन के लिए अत्यंत ही स्वाभाविक है। अगर वाकई में कोई संस्कृत जीवन गुजारना है तो बहुत ही जरूरी है कि हम गुणों के अनुसार वर्ण आश्रम को स्वीकार करें और भगवत प्राप्ति के लिए श्रम करें। वर्ण आश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। यह एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब ये सनातन धर्म में जो ये वर्ण और आश्रम का जो विभाग है, जैसे शूद्रों पर ना आधिपत्य जमाने के लिए क्षत्रिय और इस तरह करते हैं। लेकिन क्योंकि आपका गुण जो होगा, आप जो भी वर्ण में गुण और कर्म के हिसाब से आओगे उसके अनुसार यदि आप कार्य करोगे तो आप एकदम स्मूथली भगवान की भक्ति कर सकोगे। अगर कोई ब्राह्मण उसका कार्य है वो उसको समझ में नहीं आता, जैसे शूद्रों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती है वो शास्त्र अध्ययन करे, लेकिन वो फिर भी ब्राह्मण का कार्य करना शुरू कर देगा तो वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपकी जिस स्टेज पर हो वहां से आपको उठ के भगवान के पास जाना है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी साहब बताएं कि वर्ण आश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। यह एक विभाग का दूसरे विभाग पर कृत्रिम आधिपत्य नहीं है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तो स्वार्थी लोगों द्वारा वर्ण आश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ण पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर श्री रूपा जी क्या बता रहे हैं कि वैसे तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्राप्ति, लेकिन जीव क्या समझता है कि इंद्रिय तृप्ति ही मेरे जीवन का एकमात्र कारण है। तो परम सत्य का साक्षात्कार उसे समझ में नहीं आता है कि मेरे जीवन, क्योंकि शिक्षा ही नहीं दी गई और ऐसा पहले ही कहा जा चुका है। तो स्वार्थी लोगों के द्वारा वर्ण आश्रम का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। फिर क्योंकि स्वार्थ हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति हो जाती है, तो फिर जीव क्या समझता है कि जो दूसरा वर्ग है उस पर आधिपत्य जमाए, उस पर हुकूमत करे। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है, किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है। यानी कि जो लोग को पता है, जो सयाने थोड़ी सी भी अक्ल है उनके पास, तो समझ सकते हैं कि वर्ण आश्रम विभाग क्यों है, सामाजिक व्यवहार के ब्राह्मण अपना कार्य करेगा, क्षत्रिय अपना कार्य करेगा तो फिर रक्षा होती रहेगी, ब्राह्मण अपना कार्य करेगा तो सब सुशिक्षित होंगे, सबको वेद का पता चलेगा, और है ना शूद्र अपना कार्य करेगा, सबकी सेवा करेगा, और वैश्य बाकी तीन वर्णों को पालन करने के लिए धन अर्जित करेगा, तो एकदम सामाजिक जो व्यवस्था इतनी सुचारु युक्त होगी कि जीव को जो अपना जीवन का लक्ष्य है क्या भगवत प्राप्ति, वो लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सरलता हो जाएगी। अन्य कोई किसी कार्य के लिए नहीं है, मतलब दूसरों पर आधिपत्य जमाने के लिए नहीं है, ताकि इसलिए है कि अगर समाज एकदम सुचारू तरीके से होगा तो फिर मनुष्य को जीवन लक्ष्य बहुत ही इजीली मिलेगा। यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 4.13 में की गई है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि क्या है कि हम सब मिलकर भगवान को प्रसन्न कर सके, और यही चीज श्रीमद् भगवत गीता 4.13 में बताई गई है। अब आप सबकी आज ये होमवर्क है कि बताइए कि 4.13 में भगवान ने क्या बताया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।